تفسير: يا أيها النبي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناك، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، ہم نے آپ کو جو ہے وہ بھیجا ہے، اور یہاں مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی نبوت کا اثبات کیا جا رہا ہے، اثبات رسالت مراد ہے. کیسے بھیجا؟ شاہدن، گواہ بنا کر، و مبشرن، اور بشارت دینے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا. اب یہاں سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کیا مقام ہے، آپ کا کیا رتبہ ہے. فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے، ہم نے تمہیں روانہ کیا ہے، ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے، تم ہمارے امبیسیڈر ہو. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ اے نبی، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ کو ہم نے رسول بنایا ہے، تو اس سے دراصل آپ کی جو شخصیت کا جو اونچا درجہ ہے، جو عالی رتبہ ہے، عالی مقام ہے، اس کو جو ہے وہ ذہن نشین کیا جا رہا ہے کہ آپ جو رسموں کو توڑ رہے ہیں، آپ اللہ کی جو اطاعت کر رہے ہیں، تو مخالفین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. آپ کی حیثیت ایک عام دائی کی حیثیت نہیں ہے، عام دائی بھی دعویٰ کا کام کرتا ہے نا، لیکن آپ جو ہیں وہ خاص الخاص میرے امبیسیڈر ہیں، میرے نمائندہ ہیں. اگر آپ کا کوئی انکار کرتا ہے، آپ جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ اس کو مانتا نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ تو خدائی بھی شامل ہے، میں خود آپ کے ساتھ ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے، اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے چلے جائیں، اور مخالفین جو بہتان لگا رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ان کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کریں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو کہتے رہنے دیں. آپ یاد رکھیں انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. تو رسول کا مقام کیا ہے؟ پھر اللہ کی اطاعت کرنا، اور جو رسمیں ہیں، جو رواج ہیں، جو سوسائٹی کے اندر بھی چیزیں رائج ہیں، اللہ کے حکم پر ان کو توڑتے چلے جانا، پتھروں کو ہٹاتے چلے جانا. پبلک کچھ بھی کہتی رہے، لیکن رسول جو ہے وہ آگے بڑھ کر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا چلا جاتا ہے. تو ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، دوسری طرف عوام کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا سابقہ رسول سے ہے جو اللہ کا رسول ہے. کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ بہت بلند اور بڑی شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بلند مقام عطا کیا ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی مخالفت سے یا اپنی شرارتوں سے اس کا کچھ بگاڑ سکو. انا ارسلنا کا، اب دیکھیں تاکید ہے نا، انا بے شک ہم نے، پھر دوبارہ ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. دوسری بات جو یہاں پہ کہی گئی وہ کیا ہے؟ شاہدن، کہ آپ کو گواہ بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. تو شاہد، شاہد کے معنی بعض لوگ حاضر اور ناظر کے بھی کرتے ہیں، اور یہ قرآن کی تحریف معنوی ہے، قرآن کو بدلنا ہے. تو شاہد جو ہے، پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ شاہد کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینے والا، اور یہ تین قسم کی گواہیاں ہیں، تین قسم کی شہادتیں ہیں. پہلی گواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کا دین جن اصولوں پر مبنی ہے، جن حقیقتوں پر مبنی ہے، نبی ان کی صداقت کا گواہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ وہ پھر ان کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے. مثلا اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی توحید کی دعوت، ملائکہ کا وجود ہے، وحی کا نزول ہے، زندگی بعد موت کا وقوع ہے، یا جنت اور جہنم کا ظہور ہے. دنیا کو کتنا ہی عجیب یہ چیزیں کیوں نہ معلوم ہو، لیکن نبی کیا کرتا ہے؟ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ہانکے پکارے اٹھتا ہے اور دعوت دیتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے، مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی گواہی دی ہے نا، شہادت دی ہے. اہل مکہ نے मजनू, दीवाना, काहिन, साहिर, क्या क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कह दिया, है ना। तो नबी का काम क्या है, दुनिया कुछ से कुछ क्यों ना कहती रहे, कितना ही मजाक क्यों ना उड़ाती रहे, लेकिन नबी का काम है कि अलल ऐलान उन तमाम ख्यालात, तरीके, रस्में, रवाज जो है उनको वो गलत करार दे जो कि दुनिया के अंदर राइज हैं। तो ये है कौली, गवाही देना। इसी तरह हलाल जो अल्लाह के नजदीक है उसको हलाल कहना, जो हराम अल्लाह के नजदीक हराम है उसको हराम कहना। खा सारी दुनिया उसको हलाल को हराम क्यों ना कर दे और हराम को हलाल क्यों ना कहे, तैयब क्यों ना कहे। तो ये कौली गवाही रसूल ने दी और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आपको शाहिदन बनाकर भेजा, गवाही देने वाला बनाकर भेजा। अच्छा, फिर इसके एक मानी जो है वो और बताए जाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी उम्मत की गवाही देंगे जो कि आप पर ईमान लाए और जिन्होंने आपको झुठलाया, इसकी भी आप गवाही देंगे। और ये कब होगी गवाही, आखिरत में होगी, है ना। आप कहेंगे कि हाँ, आप जो ईमान लाने वाले हैं उनको पहचान लेंगे और जिन्होंने आपका इनकार किया होगा आप उनसे जो है वो दूर होना चाहेंगे, उनको अपने से दूर करना चाहेंगे। तो दूसरी गवाही कौन सी है, उखरवी गवाही, उखरवी शहादत। तो उसमें क्या होगा कि आखिरत में जब अल्लाह की अदालत कायम होगी तो उस वक्त जो है वो नबी गवाही देगा कि जो पैगाम इसके सपोर्ट किया गया था इसने बेकमो कास लोगों तक पहुंचाया, है ना। अब आप देखिए जैसे मसलन सूरत माईदा आयत 109, यौमा यजमाउल्लाहु रुसुला फयकूलु माजा उजिबतुम कालू ला इल्मा लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। जिस रोज अल्लाह तमाम रसूलों को जमा करेगा फिर पूछेगा तुम्हारी दावत का क्या जवाब दिया गया, तो वो कहेंगे कि हमको कुछ भी खबर नहीं, तमाम गैब की बातों को जानने वाले तो आप ही हैं, है ना। जैसे फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी आप पढ़ चुकी सूरत माईदा आयत 117 में, वकुंतु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ्फैतनी कुंत अंतर रकीबा अलैहिम, है ना। फिर इसी तरह जो है वो उम्मते वस्त जो है के रसूलों के बाद कौमों को भी तो गवाही देनी है ना। वकजालिका जालनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नासी वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा, सूरत अल बकरा आयत 143। तो बहरहाल कयामत के दिन जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गवाही देंगे और हुजूर की उम्मत को और हर उम्मत पर गवाही देने वाले जो शहीद होंगे, जो शुहदा होंगे, उनको भी लाया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। अब आप देखिए हमें हदीस भी मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन अपने बाज असहाब को देखेंगे कि वो लाए जा रहे हैं मगर वो आपकी तरफ आने के बजाय दूसरे रुख पर जा रहे होंगे या धकेले जा रहे होंगे। हुजूर उनको देखकर कहेंगे खुदाया ये तो मेरे सहाबी हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाद इन्होंने क्या करतूत किए हैं। तो इस तरह वो लोग जो हैं वो रसूल अल्लाह की तरफ लाने की बजाय दूसरी तरफ धकेल दिए जाएंगे कि फरिश्ते बताएंगे कि आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में जो है वो तब्दीली कर ली थी, नए नए रास्ते इख्तियार कर लिए थे, तो उनको आपकी तरफ नहीं आने दिया जाएगा। तो इससे क्या बात पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी उम्मत के एक एक शख्स की हरकत से जो है वो एक एक शख्स की हरकत के शाहिद तो नहीं है ना। इसलिए आपको तो नहीं पता कि मेरी हैं तो ये मेरी उम्मत के लोग, आप वुजू के निशानों से उनको पहचान लेंगे कि मेरी उम्मत के लोग हैं, लेकिन आप उनको दूर ले जाया जाएगा। क्यों, इसलिए कि उन्होंने दीन के अंदर जो है वो तब्दीली कर ली होगी। तो वहां पे गवाहियां पेश होंगी और हिसाब किताब होगा, दो नंबर दो। और तीसरी बात हमें क्या पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अमली शहादत दी है, अमली गवाही दी है। कैसे, कि पूरी जिंदगी में उस मसलक का अमलन इजहार किया है जिसे दुनिया के सामने पेश करने के लिए आप उठे थे, है ना। जिस चीज को अल्लाह ने भलाई कहा आपने अपनी सीरत किरदार के साथ वाकई उसको भलाई बनाकर पेश किया, जिस चीज को अल्लाह ने फर्ज कहा उसे अदा करने में आप सबसे बढ़कर आगे आगे पेश थे, भले आपका दिल चाह रहा था या नहीं चाह रहा था, है ना। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि नबी का किरदार जो था वो बेहतरीन किरदार था और आपकी जिंदगी हर उस शायबे से पाक थी जिसको जो है वो अल्लाह के नजदीक जो बुराई थी। तो तीन गवाहियां हैं नंबर एक कौली गवाही, नंबर दो अमली गवाही और नंबर तीन उखरवी गवाही। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिदन जो है वो बनाकर भेजा गया, गवाह बनाकर भेजा गया। वह मुबशिरन और बशारत देने वाला। अब यहाँ पे ये किस चीज की बशारत की जो है वो बात हो रही है, बशारत किस चीज की कि जो लोग जो दीन को कबूल करेंगे, इस्लाम को कबूल करेंगे तो दीन को कबूल करने से उनकी मुसीबतें परेशानियां छट जाएंगी। नंबर दो मोमिनों को अल्लाह ताला अनकरीब फतह और नुसरत अता करेंगे, है ना, जैसे मुख्तलिफ गजवात में मुसलमानों को फतह मिली और दीन पर अमल करने के नतीजे में उनको जो फतह मिली, दीन पर अमल करने के नतीजे में क्या हुआ कि उनको खुशखबरियां थी कि रस्मों को तोड़ेंगे तो फिर क्या है कि इस्लाम आपके लिए एक बिशारत बन जाएगा। फिर इसी तरह तीसरे इसके मानी ये हैं कि मरने के बाद उन्हें जन्नत और उसकी नेमतें मयसर आएंगी, इसकी खुशखबरी। आमतौर पे क्या होता है कि जब दावत हक पेश की जाती है तो मुखालफीन ये कहते हैं कि दीन पर अमल करने के नतीजे में तुम्हें बड़ा नुकसान होगा, लेकिन नबी क्या कहता, नबी क्या बना, मुबशिरन खुशखबरी देने वाला, बशारत देने वाला। दुनिया में भी जो है वो दीन पर अमल करने के नतीजे में सुकून इत्मीनान और चैन और रस्मों को तोड़ने के नतीजे में बड़ा सुख है। सबसे बेहतरीन निकाह कौन सा निकाह है जो कम खर्चे पर किया गया हो, जो वो आसान है, और कम खर्चे पे कौन सा किया जाएगा जिसमें रस्में नहीं होंगी, है ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए जब आप निकाह करेंगे अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों में आप बड़े हैं और आप आगे बढ़कर अगर किरदार अदा करेंगे, आप रस्मों को तोड़ेंगे, लोग तो बातें करेंगे, एक दफा तो मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया को खुश करने के लिए आप जब रस्मों को पूरा करते हैं और रस्मों को निभाते हैं तो उनका एंड कोई नहीं है, हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं और उसके बाद कर्ज के बोझ तले फैमिलीज दब जाती हैं और फिर घर में हर वक्त की एक लड़ाई और झगड़ा रहता है, कर्ज का बोझ है ना, और वो लोग जो होते हैं वो आते हैं खाते पीते हैं हाथ झाड़ते हैं और चले जाते हैं, तो उसका कुछ भी जो है वो फायदा जो है वो नहीं है। तो रस्मों को तोड़ना, तो उसके नतीजे में क्या है कि आपने रस्मों को तोड़ा और इस्लाम को पेश किया और फिर क्या था, उम्मत मुस्लिमा के लिए और मुसलमानों के लिए और सहाबा के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां थी। तो आप जो बशारते देते थे वो अपने पास से नहीं, वह मुबशिरन अल्लाह ने आपको भेजा था ना, और मुबशिर बनाकर और वह नजीरा और डराने वाला बनाकर। और नजीर जो है आम डराने को नहीं कहते बल्कि इससे मुराद है कि ऐसा डराने वाला जिसके डराने के अंदर जो है वो क्या शामिल हो, शफकत भी शामिल हो, मोहब्बत भी शामिल हो। तो आप जो थे वो लोगों को गुनाहों से डराते थे, उनकी बुराइयों से डराते थे, उनके बुरे अंजाम से डराते थे कि अगर अल्लाह पर ईमान न लाए, अगर इस्लाम को कबूल न किया तो अंजाम क्या होगा, बड़े तुम जलीलो ख्वार हो जाओगे, फिर आखरत में जहन्नुम के अजाब से भी आप डराते थे, और बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी शफकत के साथ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरीजा मनसबी है वो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, नंबर एक कि आप जो हैं अल्लाह के रसूल हैं, अरसलना का में अस्बाते रिसालत है, नंबर दो शाहिदन आप गवाह बनाकर भेजे गए हैं, आपने कौली अमली जो है वो गवाही देनी है और फिर तीसरी गवाही जो है वो उखरवी होगी। जो लोग आप पर ईमान लाए आप उसका भी इकरार करेंगे, जिन्होंने इनकार किया आप उसके बारे में भी गवाही देंगे, और फिर तीसरी बात क्या है, वह मुबशिरन और खुशखबरी देने वाले, जो ईमान को कबूल कर ले तो उनको जो है वो दुनिया में भी जो है वो इत्मीनान की, सुकून की, इस्लाम के रास्ते पर चलने की खुशखबरी, और आखरत में भी जो है वो जन्नत और जन्नत की नेमतों की खुशखबरी। व नजीरा और डराने वाला, तो मुबशिर हूं व नजीरा, तो आपका क्या था, एक वक्त में आप खुशी भी देते थे, खुशखबरी देते थे, और दूसरे वक्त में आप साथ ही लोगों को डराते भी थे। तो इससे हमें एक और बात भी पता चलती है कि ये इंजार और तबशीर जो है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की जिम्मेदारी थी, है ना, और ये आज बहसियत मुसलमान के मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हम आपकी उम्मत में से हैं, और जो आपको काम दिया गया वही हमारा काम है। फिर आपकी इसके बाद अगली जो है वो जिम्मेदारी क्या थी, वह दायन इलाही, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला। अब आप देख लीजिए दायन, और दायन जो है ये इसम फाइल है, बुलाने वाला, पुकारने वाला। अब किसकी तरफ पुकारना है? अल्लाह की तरफ, भेजने ही उसकी इजाजत से। गोया के ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह की इजाजत से उसकी तरफ दावत देने वाला। तो आपकी हैसियत क्या है? आम दाई की सी नहीं है, बल्कि आपकी एक खास हैसियत है, क्योंकि हर कोई मुबल्लिग बन सकता है। जैसे मैं और आप भी अल्लाह का दीन का काम करना चाहते हैं तो हम मुबल्लिगा हैं, लेकिन बेइज्ज़ ही की कैद जो है वो क्या है कि आप अपनी मर्जी से दाई नहीं बन गए। दावत इल्लाह की मुहिम पर अल्लाह ताला ने आपको खुद मामूर किया है, तो बेइज्ज़ ही की जो कैद है ना यहाँ पे जो लगी है, इससे फिर ये बात पता चलती है कि ए मोहम्मद, जब अल्लाह ने तुझे रसूल बनाकर भेजा है, आप रस्मों को तोड़ रहे हैं, अकायद को फैला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, और एक तूफान बदतमीजी है जो लोगों का उठ खड़ा हुआ है, लोग आपके मुखालिफ हो गए हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, जिस अल्लाह ने आपको इस मुहिम पर रवाना किया वो अल्लाह आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। दायन इलल्लाह बेइज्ज़्ही, आप दाई हैं अल्लाह की तरफ से उसकी इजाजत के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको जब नबी बनाकर भेजा, आप खुद साख्ता नबी नहीं है, बल्कि आपकी के ऊपर ये जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है, तो इसके उठाने में अल्लाह ही मदद करेगा। और आप तो कौन है? वसिराजम मुनीरा, और आपको जो है सिराज बनाकर भेजा गया जो मुनीरा है। और सिराज जो है इसके मानी क्या होते हैं? सिराज जो है ये सूरज को भी कहा जाता है ना, क्योंकि सिराज के मानी होते हैं चराग के, चमकने के, और मुनीर के मानी होते हैं नूर से है, रोशन करने वाला। अब यहाँ पे ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बताई गई है कि आप जो है सिराजो मुनीरा हैं, गोया कि आप रोशन करने वाले चराग हैं। तो आप जो हैं, आपकी सिफत दाई इल्लाह की जो है, जब आप ये फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं, तो उसका जो है वो नतीजा क्या है कि हर तरफ एक रोशन चराग है जो कि रोशनी फैला रहा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सिराजम मुनीरा जो है वो कहा गया है, क्योंकि आप देखिए कि जो सूरज होता है वो क्या करता है, सूरज रोशनी लेता नहीं है, देता है। चांद सितारे सब उससे रोशनी जो है वो लेते हैं ना, तो सूरज रोशनी लेता नहीं, देता है। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रोशनी के फैलाने में, तौहीद की रोशनी, दीने इस्लाम की रोशनी जो है उसके फैलाने में कैसे हैं कि सारी तारीकियां जो हैं वो उससे खत्म हो रही हैं, और आपके जरिए कुफ्र और शिर्क की जो तारीकियां हैं वो सब धुल रही हैं, वो सब जो है वो मिट रही हैं। तो इस दुनिया में, इस कायनात में, एक तरफ अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया, सूरज के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा? सिराज, सिराज बनाकर सूरज को जो है वो अल्लाह ताला ने भेजा। सूरत नूह को अगर आप पढ़ें तो वहां पे आपको जो है ये मिलेगी इसकी दलील, सूरत नूह की आयत 16 में। इसी तरह जो है वो रूहानी दुनिया में अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीरा कहा, चमकता हुआ चराग का लकब दिया। गोया के नबूवत के आप आफताब हैं, नबूवत का जो आसमान है उस पर आपका जो मकाम है वो क्या है? सिराज मुनीरा का है, कि आपके तुलू होने से, आपको रसूल बनाकर भेजने से क्या है कि हदायत का सूरज तुलू हुआ, और हदायत का सूरज ऐसा है कि हर शोबे जिंदगी में रहनुमाई है, मईशत, मुआशरत, सियासत, इखलाकियात। तो ये है नबूवत और हदायत का सूरज। और आप देख लीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, इल्म व हिकमत के नूर से मुनव्वर, और लोगों को तारीकियों से निकाल कर सिरात मुस्तकीम की तरफ लाने के लिए आपने कैसे रहनुमाई की, कैसे रस्मों को तोड़ा। बरसों से लोग जो थे वो रस्मों के अंदर उलझे हुए थे, डूबे हुए थे, लेकिन आपने उनको पकड़ पकड़ कर जो है वो निकाला। तो आपकी हैसियत क्या है? सिराजे मुनीरा। तो लोगों को क्या करना चाहिए? सिराजे मुनीर की कदर करनी चाहिए। और अगर कोई कदर नहीं करेगा तो आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अपनी तबाही का खुद सामान पैदा करेगा। फिर क्या करेगा वो? दुनिया में गुमराह भटकता रहेगा। फिर क्या होगा? आखिरत में भी जहन्नुम के ईंधन का वो जरिया बनेगा। बशीरिल मोमिनीना, और आप खुशखबरी दे दीजिए मोमिनों को। अब खुशखबरी किसको मिल रही है? मोमिनों को। पहले किसके लिए थी? आम थी आपकी जो थी, वो मुबशिर व नजीरा, सबके लिए थी। लेकिन जो कबूल करेंगे अब उनके लिए खास है। वो बशीरिल मोमिनीना कि आप जो हैं बशीर तो सबके लिए हैं, लेकिन अब खास तौर पर आप उनके लिए बशीर हैं जो के ईमान लाने वाले हैं। बी अन्नलहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, इसलिए कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। फदलन कबीरा कहा गया, तो मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए बड़ा फजल है जो के रसूल की दावत जो है उस पर लब्बैक कहेंगे, जो रसूल जो है उस पर ईमान लाएंगे। तो मोमिनों पर अल्लाह का फजल कबीर क्या है? अब जरा सोचें, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? बशीरिल मोमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फजलन कबीरा, कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। ये फजलन कबीरा जो है ना, सिराजम मुनीरा को कहा गया है, आफताबे नबूवत। रसूल अल्लाह को भेजा जिनकी ये सिफात थी, शाहिद मुबशिर व नजीरा। तो आपने रसूल अल्लाह की कितनी सिफात पढ़ी? नंबर एक, अल्लाह के रसूल। नंबर दो, शाहिद। नंबर तीन, मुबशिर। नंबर चार, नजीरा। और नंबर पांच क्या पढ़ा? दायन इलल्लाह। और नंबर छह, सिराज मुनीरा। और फिर कहा कि फदलन कबीरा, है ना? तो ये छह सात जो सिफात हैं ये क्या हैं? ये अल्लाह ताला की तरफ से मोमिनों पर अल्लाह का एहसान है कि आपने अल्लाह को, अल्लाह ने रसूल अल्लाह को सब अंबिया से अफजल बनाया। आपकी उम्मत भी दूसरी उम्मतों पर जो है वो उसको एक फजीलत हासिल है। जैसे अहदीस से हमें क्या पता चलता है? अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह नो कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़िश्ता कौमों के मुकाबले में तुम्हारा रहना ऐसा है जैसा असर से सूरज गुरूब होने का वक्त। गुज़िश्ता कौमों से मुराद यहूदो नसारा। अहले तुरात को तुरात दी गई तो उन्होंने सुबह से दोपहर तक मजदूरी की, फिर थक गए तो उन्हें एक एक किरात मिला। अहले इंजील को इंजील दी गई, उन्होंने दोपहर से असर तक, असर की नमाज तक मजदूरी की, फिर थक गए, उन्हें भी एक किरात मिला। फिर हम मुसलमानों को कुरान दिया गया, हमने सूरज गुरूब होने तक मजदूरी की और काम पूरा कर दिया, तो हमें दो किरात दिए गए। अब अहले किताब कहने लगे, परवरदिगार तूने उन्हें दो किरात दिए और हमें एक एक, हालांकि हमने इनसे ज्यादा काम किया है। अल्लाह अज़्ज़ोजल ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुम्हारी मजदूरी से जो तुमसे तय की थी कुछ दबाया तो नहीं? वो कहने लगे नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा फजल है फिर, जिसे मैं जो कुछ चाहूं दू। ये बुखारी की रवायत है। फिर इसी तरह हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें दूसरी उम्मतों पर तीन बातों में फजीलत मिली। नंबर एक, हमारी सफें फरिश्तों की सफों की तरह की गई। नंबर दो, और हमारे लिए सारी जमीन नमाज की जगह है, पाक बनाया गया। नंबर तीन, और जमीन की खाक हमें पाक करने वाली है जब पानी ना मिले, है ना? कहते हैं एक और बात भी बयान की, खैर इमाम मुस्लिम की ये रवायत है। तो क्या है कि मोमिनों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाने वाले हैं कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। तो हम रसूल अल्लाह के उम्मती हैं, रसूल अल्लाह के उम्मती बनने की वजह से, उम्मत वस बनने की वजह से हमें जो खातमुन नबीयीन मिले, तो ये क्या है? ये अल्लाह का बड़ा फजल है जो हमें मिला। तो हमें भी रसूल अल्लाह को अपने लिए उसवाए हसना बनाना चाहिए, रोल मॉडल बनाना चाहिए। वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीना, और आप हरगिज अतात ना कीजिए काफरों की और ना ही मुनाफिकों की। और आप देख लीजिए कि यहां पर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है मुखातिब करके कि आपने काफिरों और मुनाफिकीन की परवाह नहीं करनी, उनकी अतात नहीं करनी। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपके बारे में पहले ही बता दिया है ना, आपकी हैसियत और मकाम क्या है? रसूल हैं, शाहिद हैं, मुबशिर हैं और नजीर हैं। तो फिर इसके मानी क्या है कि आपको किसी की कोई जो है वो परवाह नहीं करनी। अच्छा, इससे फिर हमारे सामने क्या बात आती है कि जब आप नजीर हैं तो आपका काम है लोगों को डराना, और जब आप दावत का काम करेंगे और अपना रिसालत का मनसब अदा करेंगे तो लोग तो बातें करेंगे, तो आपने क्या करना है, वला तुतील काफिरीना। यहाँ पे ऑर्डर के सिगे में मना किया जा रहा है, हुक्म देकर कहा जा रहा है, कहना नहीं मानना काफरों का, वल मुनाफिकीना और ना ही मुनाफिकीन का, किसी का कहना नहीं मानना। तो आप जो है सूरत अज़ाब को देखिए, आप गज़वाए खंदक को देखिए कि मुनाफिक और काफिरों की साजिशें क्या थी, फिर आप देखिए कि कैसे कैसे उनके मुतालबात थे कि दीन के अंदर वो ये चाहते थे कि आप साथ साथ उनके बुतों को कुछ ना कहें, है ना। फिर मुनाफिकीन जो थे वो क्या चाहते थे कि इस्लाम को अपनी साजिशों के जरिए नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और कहा जा रहा है कि आपने उनकी कोई परवाह नहीं करनी। गज़वाए अज़ाब ही की मिसाल आप सामने रखें कि कैसे मुनाफिकीन ने कहा कि एक तरफ ये कह रहे हैं कैसरो किसरा फतह होने वाले हैं, ये खुशखबरी सुनाई जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे घर खतरे में हैं, हमारे बच्चे, हमारे औलाद, हमारे बीवियां खतरे में हैं। और फिर वो क्या कहते थे, माले गनीमत देखते थे तो कहते थे आपके साथ है, वरना फिर वो काफरों के साथ जाके मिल जाते थे, है ना। तो आपने इनका कहना नहीं माना, और ये जो रस्में जब तोड़ी हैं आपने, और आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि ये कितना मुश्किल था कि मुंह बोले बेटे की बीवी जो है उससे जो है वो शादी करना कितना मुश्किल था, आप खुद तसव्वुर करें ना। हमारे यहाँ आप देखिए एक मर्द को जो है वो कितनी शादियों की इजाजत है, चार की इजाजत है ना। अगर वो दूसरी शादी ही कर ले तो क्या कयामत आ जाती है घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, लो जी उसने दूसरी शादी कर ली, हालांकि इस्लाम तो इजाजत देता है ना। फिर इसी तरह आप देखें कि विरासत का कानून है, अगर कोई उसकी तकसीम कर दे तो कितनी कयामत आ जाती है, तकसीम ना करें तो लोग कुछ नहीं कहते। इसी तरह आप देखें कि डेथ हो जाए तो उसके बाद जो है 3 दिन तो सोग है, और औरत के लिए उसका शौहर फौत हो जाए तो 4 माह और 10 दिन, लेकिन अगर जो है कोई 7वां 10वां 40वां और साल वो क्या कहते हैं साल का खत्म, बरसी, बरसी कहते हैं जो, अगर वो कोई ना मनाए तो कहते हैं लो जी इनके घर तो दाने खत्म हो गए, अपने माँ बाप के लिए इन्होंने दुआ तक नहीं कराई, लोगों को इकट्ठा करके कोई फल फ्रूट नहीं बांटा, और अब तो कोई कहता है कि वो मैयत के साथ जो है ना ड्राई फ्रूट भी भेजते हैं, कोई कहता है कि फ्रूट तकसीम किया जाता है, और बहुत सी रस्में अब सोसाइटी में राइज हैं, जो नहीं करते तो दुनिया बातें करती है। और फिर ये कि तो अब आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप दबिए नहीं, आप अतात मत कीजिए ना काफिरों की और ना मुनाफिकीन की, वदा अजाहुम। और आप देखिए फिर साथ ही क्या कहा, वदा, और इसके माने क्या है कि और तू छोड़ दे, दा छोड़ दे, अजाहुम इनका अजा देना, इनका जो तकलीफ देना है, अजियत है, इसको जो है आप छोड़ दीजिए। वतवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पर आप भरोसा कर लीजिए, अल्लाह को अपना वकील बना लीजिए। तो यहां पर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कहा कि वदा अजाहुम, असल में ये जो अजियतें थी कौन दे रहा था, ये मुनाफिकीन दे रहे थे। कैसे तजियतें दे रहे थे कि आपने हजरत जैनब के साथ जो निकाह कर लिया तो वो इस बात पर जो थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे कि आपने हजरत जैनब से जो निकाह किया है, तो उन्होंने जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस चीज के बहुत से उन्होंने इल्जामात लगाने चाहे कि नऊज बिल्ला, गोया के आप जो थे आप चाहते ही थे कि आप उनसे जो है वो निकाह कर ले। तो ये जो है वो कि आपका मुनाफिकों का मजाक उड़ाना, बातें करना, तो कहा कि वदा अज़ाहुम, तो यहाँ पे ये ऑर्डर देना कि उनकी अजियत को जो है वो उसकी परवाह ना कर, मतलब ये है कि उसका कुछ भी लिहाज ना कर। दा के अंदर ना हकारत का मफहूम भी शामिल है कि इनकी खुराफात जो हैं उनको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, छोड़ दें उनको। वतवक्कल अल्लाह, और अल्लाह को अपना वकील बना लें, इसके मानी क्या है कि अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द कर दें। वकफा बिल्लाही वकीला, और अल्लाह ही है काफी कि उसको जो है वो वकील बना लिया जाए। ये जो आयत है ना वतवक्कल अल्लाह वकफा बिल्लाही वकीला, اس کے اندر رسول اللہ کے لیے بہت بڑی تسلی ہے. کافر اور جو منافق ہیں ان کے لیے دھمکی ہے کہ اب تم ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو, اللہ ہی ان سے جو بھی نفاق کرنے والے ہیں, جو طوفان بدتمیزی اٹھانے والے ہیں, جو باتیں کرنے والے ہیں, اللہ ہی ان سے جو ہے وہ بدلہ لینے والا ہے, اور اللہ ہی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی وکالت کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. تو دراصل یہاں پر جو ہے وہ یہ جو آیتیں ہیں, آیت نمبر 45 سے 48, اس پوری بات کا نچوڑ کیا ہے کہ رسول اللہ کا فرض منصبی کیا ہے, آپ رسول ہیں اور آپ کے اوصاف کیا ہیں, شاہد, مبشر, نذیر, داعین اللہ, سراج منیرہ. تو آپ کا کام کیا ہے کہ جو اللہ کا امبیسیڈر ہوتا ہے نا وہ سوسائٹی کے اندر زندگی کے ہر شعبے میں ڈنکے کی چوٹ پر حق کی تلوار بن جاتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے, کسی ملامت گر کی ملامت سے, کسی خوف سے, کسی تما سے, کسی ہرس سے, کسی چیز سے وہ متاثر نہیں ہوتا اور وہ بات پہنچاتا ہوا آگے چلتا چلا جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو حکم دیا تو وہ یہ کام کرتا ہے. تو اللہ ہی پھر اس کا حامی اور مددگار بھی ہوتا ہے, اللہ ہی اس کا جو ہے وہ وکیل بھی ہوتا ہے, اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر اسی رشتے سے میرا اور آپ کا تعلق رسول اللہ سے کیا ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں, آپ کے مشن کو مجھے اور آپ کو آگے بڑھانا ہے. اور سراج منیرہ کہ آپ نے جو ہدایت کا چراغ روشن کیا اور لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالا, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی گمراہی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے اسلام کے سورج کو لیں اور اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ طے کریں, تو ہمارے سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. آج دنیا سسک رہی ہے, مر رہی ہے, تڑپ رہی ہے, پریشان حال ہے, تو آئیے میں اور آپ اسلام کی تعلیمات, رسول اللہ کا اسوہ, قرآن کی آیات اس کو عام کر دیں. اور ہمارا حال تو کیا ہے, مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.